नमस्कार, मैं अजीत कुमार, बीए द्वितीय वर्ष का छात्र। मैं आपके लिए प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, यह पुस्तक जो कि डॉक्टर के सी श्रीवास्तव के द्वारा लिखित है, मैं इसके अंतर्गत गुप्तों के उदय के पूर्व भारत की राजनैतिक दशा इस पाठ की रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। गुप्तों के उदय के पूर्व भारत की राजनैतिक दशा। कुषाणों के पतन के बाद से लेकर गुप्तों के उदय के पूर्व तक का काल राजनैतिक दृष्टि से विकेंद्रीकरण तथा विभाजन का काल माना जाता है। इस समय देश में कोई सार्वभौम शक्ति नहीं थी। संपूर्ण देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था जो परस्पर संघर्षरत थे। चतुर्दिक अराजकता तथा अव्यवस्था का बोलबाला था। भारत में इस समय दो प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र तथा गणतंत्र। इसके अतिरिक्त कुछ विदेशी शक्तियां भी थीं। निम्नलिखित पंक्तियों में हम उस समय के विभिन्न राजाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। गुप्तों के उदय के पूर्व उत्तर तथा दक्षिण भारत में अनेक शक्तिशाली राजतंत्रों का अस्तित्व था। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार से हैं। पहला है नागवंश। कुषाणों के पतन के पश्चात मध्य भारत तथा उत्तर प्रदेश के भूभागों पर शक्तिशाली नागवंशों का उदय हुआ। गंगा घाटी में कुषाण सत्ता के विनाश का श्रेय नागवंश को ही दिया जाता है। पुराणों के विवरण से पता चलता है कि पद्मावती, मथुरा तथा कांतिपुर के नाग कुलों का शासन था। पुराणों के अनुसार मथुरा में 7 तथा पद्मावती में 9 नाग राजाओं ने शासन किया। गुप्तों के उदय के पूर्व पद्मावती तथा मथुरा के नागवंश काफी शक्तिशाली थे। इनमें भी पद्मावती का नाम कुल अधिक महत्वपूर्ण था। पद्मावती की पहचान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित आधुनिक पदमपवैया नामक स्थान से की जाती है। पद्मावती के नाग लोग भार शिव कहलाते हैं। वे अपने कंधों पर शिवलिंग वहन करते थे, अतः वे भार शिव कहलाए। भार शिवों का वाकाटकों के साथ वैवाहिक संबंध था। भार शिव कुल के शासक भवनाग की पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश प्रवर सेन प्रथम के पुत्र के साथ हुआ था। समुद्रगुप्त के समय पद्मावती के भारशिव नागवंश का शासक नागसेन था। प्रयाग प्रशस्ति में उसका उल्लेख मिलता है। मथुरा में समुद्रगुप्त के समय में गणपति नाग का शासन था। 3री शताब्दी के अंत में पद्मावती तथा मथुरा के नाग लोग मथुरा, धौलपुर, आगरा, ग्वालियर, कानपुर, झांसी तथा बांदा के भूभागों तक फैल गए थे। अगला वंश है बडवा का मौखरी वंश। नागों की राजधानी पद्मावती के पश्चिम में लगभग 150 मील की दूरी पर बडवा में मौखरियों की एक शाखा 3री शताब्दी ईस्वी के प्रथमार्ध में शासन कर रही थी। 239 ईस्वी में इस वंश का शासन महासेनापति बल के हाथों में था। इस वंश के लोग संभवतः पश्चिमी क्षत्रपों अथवा नागों के सामंत थे। वे वैदिक धर्म के पोषक थे। बल के 3 पुत्र थे, जिनमें से प्रत्येक ने एक एक त्रिरात्र यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इन यज्ञों की स्मृति में उन्होंने पाषाण यूपों का निर्माण करवाया था। इन पर उत्कीर्ण लेख ही इस वंश के इतिहास का एकमात्र स्रोत हैं। अगला राजवंश है मघराज वंश। मघराज वंश। नागों की राजधानी पद्मावती के दक्षिण पूर्व में मघों का राज्य स्थित था। पहले उसका राज्य केवल बघेलखंड रीवा मंडल तक ही सीमित था। इस वंश का प्रथम ज्ञात राजा वशिष्ठी पुत्र भीमसेन है। उनके पुत्र का नाम कौत्सी पुत्र पोटसिरी मिलता है। वह एक योग्य शासक था। उसकी राजधानी बंदोगढ़ में थी। 155 ईस्वी के लगभग इस वंश के भद्र मघ ने कौसाम्बी को कुषाणों से छीन लिया। यहाँ से शक सम्वत 81 अर्थात 159 ईस्वी का उसका एक लेख मिलता है। भद्र मघ ने सिक्के भी उत्कीर्ण करवाए थे। उसके पश्चात गौतमी पुत्र शिव मग्ध तथा फिर वैश्रमण ने शासन किया। वैश्रमण के समय में मगध राज्य उत्तर की ओर फतेहपुर तक विस्तृत हो गया। मगध वंश के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास तथा उनके काल की घटनाओं के विषय में हमारा ज्ञान अत्यल्प है। कौसाम्बी में 250 ईस्वी तक मगध राजवंश ने शासन किया। कौसाम्बी के ही समान अहिच्छत्र तथा अयोध्या में भी इस समय शक्तिशाली राजतंत्र थे। अहिच्छत्र की पहचान बरेली जिले में स्थित रामनगर से की जाती है। यहाँ से प्राप्त बहुसंख्यक सिक्कों में मित्रवंशी राजाओं के नाम ज्ञात होते हैं। कुछ सिक्कों के ऊपर अच्युत नामक अंकित है, जिसकी पहचान प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित अच्युत नामक शासक से की जाती है। इस प्रकार अयोध्या से प्राप्त सिक्कों में धनदेव, विशाखदेव, मूलदेव आदि राजाओं के नाम मिलते हैं। अन्य राजतंत्र। प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि उस समय उत्तर तथा उत्तर पूर्वी भारत में 5 अन्य राजतंत्रों का अस्तित्व था। समतट अर्थात पूर्वी बंगाल, डवाक अर्थात असम के नौगांव में स्थित डबोक, कामरूप अर्थात असम का केंद्रीय भाग, नेपाल तथा कर्तिपुर अर्थात कुमायूं स्थित वर्तमान कतुरिया राज। इन राज्यों के शासकों के विषय में कुछ भी पता नहीं है। अगला वंश है वाकाटक राजवंश। इस राजवंश की स्थापना 3री शताब्दी ईस्वी के मध्य विष्णुवृद्धि गोत्र के विंध्य शक्ति ने की थी। उसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। सातवाहनों के पश्चात विंध्य शक्ति ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उनका साम्राज्य विंध्य पर्वत के उत्तर में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र प्रवर सेन प्रथम एक शक्तिशाली राजा हुआ। उसने सम्राट की उपाधि ग्रहण की। प्रवर सेन प्रथम के समय में वाकाटकों की शक्ति काफी मजबूत हो चुकी थी। इस समय 275 से 235 ईस्वी वाकाटकों का साम्राज्य उत्तर के मध्य प्रांत तथा बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में उत्तरी हैदराबाद तक फैला था। अगला राजवंश है पल्लव राजवंश। दक्षिण भारत की दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति पल्लवों की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वाकाटकों के समान पल्लव भी प्रारंभ में सातवाहनों की अधीनता स्वीकार करते थे, परंतु बाद में वे स्वतंत्र हो गए। उनकी राजधानी कांची अर्थात मद्रासी स्थित कांचीवरम में थी। उत्तर की ओर उनके साम्राज्य में आंध्र प्रदेश का एक भाग भी सम्मिलित था। पश्चिम में उनका साम्राज्य पश्चिमी समुद्र तट तक विस्तृत था। पल्लव वंश के प्रारंभिक राजाओं में स्कंद वर्मन का नाम उल्लेखनीय है। समुद्रगुप्त के समय में पल्लव वंश का शासक विष्णुगोप था। दक्षिण भारत के अन्य राजतंत्र। वाकाटकों तथा पल्लवों के अतिरिक्त दक्षिणापथ की राजनीति में अन्य कई शक्तियां सक्रिय थीं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के 12 राजाओं का उल्लेख हुआ है, जो दक्षिणी कोसल से कांची तक फैले हुए थे। दक्षिण पश्चिम में सातवाहनों के बाद आभीर आंध्र प्रदेश के इक्ष्वाकु तथा कुंतल में चुटु सातकर्णी वंशों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। इनका विवरण इस प्रकार है। आभीर इस वंश का संस्थापक ईश्वर सेन था, जिसने 248 से 249 ईस्वी के लगभग कलचुरी चेदी संवत की स्थापना की। उसके पिता का नाम शिवदत्त मिलता है। नासिक में उसके शासनकाल के 9वें वर्ष का एक लेख प्राप्त हुआ है। यह इस बात का सूचक है कि नासिक क्षेत्र के ऊपर उसका अधिकार था। अपरांत तथा लाट प्रदेश पर भी उसका प्रभाव था, क्योंकि यहाँ कलचुरी चेदी संवत का प्रचलन मिलता है। आभीरों का शासन 4थी सदी तक चलता रहा। इक्ष्वाकु। इस वंश के लोग कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में शासन करते थे। पुराणों में उन्हें श्री पर्वतीय अर्थात श्री पर्वत का शासक तथा आंध्रभृत अर्थात आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक श्री शांत मूल था। अपनी स्वतंत्र तथा सत्ता स्थापित करने के उपलक्ष्य में उसने अश्वमेध यज्ञ किया। वह वैदिक धर्म का अनुयायी था। उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी माठरीपुत्र वीर पुरुष दत्त हुआ, जिसने 20 वर्षों तक राज्य किया। अमरावती तथा नागार्जुनी कोंड से उसके लेख मिलते हैं। इनमें बौद्ध संस्थाओं को दिए जाने वाले दान का विवरण है। वीर पुरुष दत्त का पुत्र तथा उत्तराधिकारी शांतमूल द्वितीय हुआ, जिसने लगभग 11 वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद इक्ष्वाकु वंश की स्वतंत्र सत्ता का क्रमशः लोप हुआ। इस वंश के राजाओं ने आंध्र की निचली कृष्णा घाटी में तृतीय शताब्दी के अंत तक शासन किया। तत्पश्चात उनका राज्य कांची के पल्लवों के अधिकार में चला गया। इक्ष्वाकु लोग बौद्ध मत के पोषक थे। अगला वंश है चुटु सातकर्णी वंश। महाराष्ट्र तथा कुंतल प्रदेश के ऊपर 3री सदी में चुटु सातकर्णी वंश का शासन स्थापित हुआ। कुछ इतिहासकार उन्हें सातवाहनों की ही एक शाखा मानते हैं, जबकि कुछ लोग उनको नागकुल से संबंधित करते हैं। उनके शासन का अंत कदम्बों द्वारा किया गया। इन वंशों के साथ साथ अन्य कई छोटे छोटे राजवंश भी दक्षिण भारत की राजनीति में सक्रिय थे। कृष्णा तथा मसूलीपट्टम के बीच बृहत्फलायन तथा कृष्णा और गोदावरी के बीच सालंकायन वंशों, जो पहले इक्ष्वाकुओं के अधीन थे, ने कुछ समय के लिए स्वतंत्रता स्थापित कर ली थी। बृहत्फलायनों की राजधानी पिथुंड तथा सालंकायनों की वेंगी में थी। बाद में दोनों वंश पल्लवों के अधीन हो गए। सुदूर दक्षिण में चोल, चेर तथा पांड्य राजवंशों का शासन था। अगला मुख्य शीर्षक है गणतंत्र या जनजातीय राज्य। प्राक गुप्त के में राजतंत्रों के साथ साथ गणराज्यों का भी अस्तित्व था। वे गणराज्य पूर्वी पंजाब, राजस्थान, मालवा तथा मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में फैले हुए थे। इनमें मालव, अर्जुनायन, यौधेय, शिवि, लिच्छवी, आभीर, मद्रक, सनकानिक, प्राजून, काक, खरपरिक आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनका परिचय इस प्रकार है। मालव। सिकंदर के आक्रमण के समय मालवा गणराज्य के लोग पंजाब में निवास करते थे। कालांतर में वे पूर्वी राजपूताना में आकर बस गए। पाणिनि ने उनका उल्लेख आयुद्धजीवी संघ के रूप में किया है। उनके लगभग 6,000 सिक्के मिले हैं। उन पर मालवाना मजय, मालवजय तथा मालव गणस्य उत्कीर्ण है। विद्वानों ने इन सिक्कों की प्राचीनता ईसा की 2री से 3री शताब्दी के मध्य तक निर्धारित की है। सिक्कों पर अंकित लेख इस बात के सूचक हैं कि उनमें गणतंत्र शासन पद्धति थी। नहपान के नासिक लेख से पता चला है कि उसने मालवों को पराजित किया था। गुप्तों के उदय के पूर्व संभवतः वे मंदसौर अर्थात प्राचीन दसपुर में राज्य करते थे। यहाँ से प्राप्त लेखों में मालव संवत का ही प्रयोग मिलता है। 4थी सदी के अंत तक उनका राजनैतिक अस्तित्व बना रहा। समुद्रगुप्त ने उन्हें पराजित कर अपने अधीन कर लिया था। अगला है अर्जुनायन। इस गण जाति के लोग आगरा, जयपुर क्षेत्र में शासन करते थे। प्रथम शताब्दी के लगभग के उनके कुछ सिक्के मिले हैं, जिन पर अर्जुनायन तथा अर्जुनाय नानाम जय अंकित है। इससे सूचित होता है कि उनका भी अपना गणराज्य था। प्रयाग लेख से पता चलता है कि उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी। अगला जनजातीय राज्य है औधेय। यौधेय। कुषाणों के पूर्व ये लोग उत्तरी राजपूताना तथा दक्षिणी पूर्वी पंजाब में निवास करते थे। पाणिनि ने उन्हें आयुधजीवी संघ कहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक वीर और स्वाभिमानी जाति थी। जूनागढ़ लेख से पता चलता है कि रुद्रदामिन ने कड़े संघर्ष के बाद उन्हें जीता था। लेख के अनुसार वे अत्यंत शक्तिशाली एवं साधन संपन्न थे। कुषाणों ने उन्हें परास्त कर अपने अधीन कर लिया था, परंतु कुषाण साम्राज्य के पतनोपरांत वे स्वतंत्र हो गए। यौधियों के सिक्के सहारनपुर, देहरादून, देहली, रोहतक, लुधियाना तथा कांगड़ा से प्राप्त हुए हैं। लुधियाना से प्राप्त एक मिट्टी की मुहर पर यौधेयानाम जय मध्य धराणाम लेख उत्कीर्ण है। इससे सूचित होता है कि उनके पास विजय प्राप्त करने का कोई मंत्र था। उनके प्रारंभिक सिक्कों पर यौधेयन तथा बाद के सिक्कों पर यौधेय गणस्य जय उत्कीर्ण है। बाद के सिक्के तीसरी चौथी शताब्दी के हैं। इससे स्पष्ट है कि कुषाणों को हराकर यौधेयों ने उपयुक्त क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। उनके साम्राज्य में सतलज के दोनों ओर की भूमि तथा बहावलपुर सम्मिलित था। वे कार्तिकेय के उपासक थे। अगला जनजातीय राज्य है कुनिंद। यमुना तथा सतलज के बीच भूभाग में यह गणराज्य स्थित था। उनके कुछ सिक्कों पर केवल कुनिंद तथा कुछ पर कुनिंद गणस्य अंकित है। विद्वानों ने इनका काल ईसा पूर्व पहली शताब्दी से दूसरी शताब्दी के मध्य तक निर्धारित किया है। टॉलमी के भूगोल में कुलिंद्रेने शब्द मिलता है, जिससे तात्पर्य व्यास तथा गंगा नदियों के बीच के समस्त ऊपरी प्रदेश से है। विष्णु पुराण में कुनिंदों को पर्वत घाटी के निवासी कहा गया है। इससे संकेत मिलता है कि कुनिंदों का संबंध किसी पहाड़ी के समीपवर्ती प्रदेश से था। लगता है कि शकों के आक्रमण का सामना करने के लिए यौधेय कुनिंद तथा अर्जुनायन गणों का एक संघ बना हुआ था। अगला जनजातीय राज्य है सीवी। सिकंदर के आक्रमण के समय सीवी लोग झेलम तथा चिनाब के संगम के निचले भाग में निवास करते थे। बाद में उन्होंने चित्तौड़ के समीप माध्यमिका से अपना राज्य स्थापित कर लिया। यहाँ से उनके कुछ सिक्के मिलते हैं। इसका काल ईसा पूर्व द्वितीय तथा प्रथम शताब्दी निर्धारित किया गया है। अगला जनजातीय राज्य है लिच्छवी। गुप्तों के उदय के पूर्व गंगा घाटी में कई शताब्दियों बाद लिच्छवी पुनः शक्तिशाली हो गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय लिच्छवियों के दो राज्य थे। पहला उत्तरी बिहार, जिसकी राजधानी वैशाली में थी, तथा दूसरा नेपाल, जिसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर अपने राजवंश की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। अगला गणतंत्र या जनजातीय राज्य है आभीर। पेरिप्लस में इसे अभीरिया कहा गया है। आभीरों के लेख महाराष्ट्र में भी मिलते हैं, जिसे पता लगता है कि उनका महाराष्ट्र में भी शासन था। उनकी दूसरी शाखा भिलशा तथा झांसी के मध्य अहिरवार नामक स्थान में शासन करती थी। गुप्तों के उदय तक ये दोनों शाखाएं विद्यमान थी। अगला है मद्रक। यह गणराज्य रावी तथा चिनाब नदियों के बीच के प्रदेश में स्थित था। यह भाग चौथी शती के प्रारंभ में उन्होंने गढ़हरों से जीता। सियालकोट संभवतः उनकी राजधानी थी। अभी तक मद्रकों का कोई सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। अगले जनजातीय राज्य हैं खरपरिक। मध्य प्रदेश के दामोह जिले में इस गण जाति के लोग शासन करते थे। उपर्युक्त प्रमुख गणराज्यों के अतिरिक्त गुप्तों के उदय के पूर्व औदुम्बर, उत्तम भद्र, वृष्णि आदि कुछ अन्य छोटे छोटे गणराज्य भी विद्यमान थे। औदुम्बर अथवा उदुम्बर गणराज्य कांगड़ा, गुरदासपुर तथा होशियारपुर पंजाब में स्थित था। इसके सिक्के मिलते हैं, जिन पर राजा तथा जन दोनों के नाम अंकित हैं। औदुम्बरों तथा उनके गण का उल्लेख अष्टाध्यायी बृहत संहिता, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण आदि में मिलता है। उन्हें विश्वामित्र का वंशज तथा कौशिक गोत्र का बताया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुषाणों के पूर्व ही इस गणराज्य का स्वतंत्र अस्तित्व था। कुषाणों ने इन्हें जीतकर अपने अधीन कर लिया था। उत्तम भद्र जाति राजस्थान के किसी क्षेत्र में निवास करती थी। नहपान के नासिक गुहा लेख में इनका उल्लेख मिलता है। बताया गया है कि नहपान के मालवों के घेरे से उन्हें मुक्त कराया गया था। उत्तम भद्र लोक शकों के अधीन रहे होंगे। वृष्णिसंघ का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। कनिंगम को एक मुद्रा मिली है जिस पर विष्णुराज याग्नस्य मुभरस्य अंकित है। हर्षचरित्र में विष्णु का उल्लेख एक जनपद के रूप में मिलता है। महाभारत काल में अंधक वृष्णिसंघ था। वृष्णि गणराज्य के सिक्के भी मिलते हैं जिन पर वृष्णि राजन्य गणयत्रातस्य उत्कीर्ण है। इनका समय ईसा पूर्व दूसरी से पहली शताब्दी माना जाता है। सिक्कों पर चक्र का चिन्ह भी अंकित है। महाभारत के अनुसार वासुदेव कृष्ण इस संघ के सदस्य थे। गुप्तों के उदय के बहुत पहले ही इन गणराज्यों का अस्तित्व समाप्त हो गया था। अगला मुख्य शीर्षक है विदेशी शक्तियाँ। गुप्तों के उदय के पूर्व भारत के पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों में अनेक विदेशी शक्तियाँ विद्यमान थीं। गुजरात तथा काठियावाड़ में पश्चिमी क्षत्रपों का राज्य था। पश्चिमोत्तर सीमाओं पर पर्शिया के ससैनियन नरेशों के आक्रमण हो रहे थे। ससैनियन नरेश शापुर प्रथम, जिसका समय काल है 242 से 272 ईस्वी, ने कृषाणों को परास्त कर पेशावर से सिंधु नदी घाटी तक का प्रदेश जीत लिया था। 283 ईस्वी में इस वंश के बहराम द्वितीय ने अफगानिस्तान, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तथा सिंध को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। शापुर द्वितीय, जिसका समय काल है 309 से 379 ईसा के काल में भी पश्चिमोत्तर भाग पर ससैनियन अधिकार बना रहा। कुछ शक तथा कुषाण शासक भी यहाँ उनकी अधीनता स्वीकार करते थे। अल्तेकर का विचार है कि पेशावर का कुषाण राजा किदार शापुर की अधीनता स्वीकार करता था। कालांतर में समुद्रगुप्त की सहायता पाकर उसने अपने को ससैनियन आधिपत्य से मुक्त कर लिया। प्रयाग लेख में किसी कुषाण शासक को दैवपुत्र शाहिशा हानुशाही कहा गया है। संभवतः यह किदार की ही उपाधि थी। मुद्राओं से वासुदेव द्वितीय के पश्चात पंजाब में तीन सिथियन कुलों के अस्तित्व का ज्ञान होता है। पश्चिमी पंजाब में शाक वंश का शासन था। इस वंश की राजधानी पेशावर में थी। यहाँ से शाक राजाओं के बहुसंख्यक सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिक्कों से पता चलता है कि मध्य पंजाब के ऊपर सीलद तथा गढ़हर जातियों का शासन था। इन दोनों वंशों ने यहाँ समुद्रगुप्त के समय तक शासन किया। पंजाब में शाक सीलद शासन का विनाश कुषाणों की छोटी शाखा द्वारा हुआ, जिसे किदर कुषाण कहा गया है। इस शाखा का सरदार किदार नामक व्यक्ति था। वह पहले ससानी राजाओं की अधीनता स्वीकार करता था, किंतु कालांतर में उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी तथा गांधार, कश्मीर और पश्चिमी एवं मध्य पंजाब में अपनी स्थिति सुदृढ़ बना लिया। किदार ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की तथा उसके पास उपहार आदि भेजे थे। शकों तथा कुषाणों के साथ साथ प्रयाग लेख में मुरुंड नामक एक विदेशी जाति का उल्लेख मिलता है। टॉलमी उन्हें साकेत क्षेत्र का शासक बताता है। चीनी स्रोतों में उन्हें म्यूलिन कहा गया है। गुप्तों के उदय के समय संभवतः गंगा नदी के किनारे कन्नौज में उनका स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गया था। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि ईसा के तृतीय शताब्दी के उत्तरार्ध तथा चतुर्थ शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों का भारत राजनैतिक दृष्टि से अराजकता, अव्यवस्था एवं दुर्बलता के दौर से गुजर रहा था। यह समय किसी महान सेनानायक की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सुनहला अवसर प्रदान कर रहा था। शीघ्र ही मगध के गुप्त वंश में ऐसे सेनानायकों का उदय हुआ। गुप्तों के उदय के साथ भारत की राजनीतिक परिस्थितियां केंद्रीकरण की दिशा में अग्रसर हुईं। और इस प्रकार से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।